ओम शांति। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, एक खंडर के हृदय सी एक जंगली फूल सी आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है, निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी पत्थरों से ओट में जाके बतियाती तो है, दुख नहीं कोई की अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो ना हो आकाश सी छाती तो है। तो चाहे माया कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो और माया के प्रलोभन और माया के दाव पेच और माया के जंजाल कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कुछ भी हो, परंतु एक आशा है, एक होप, आशा की एक किरण अब भी है, चाहे कुछ भी हो परंतु आकाश सी छाती है, कुछ भी हो परंतु ये सड़क भोर तक जाती है, कुछ भी हो परंतु ये जो दर्द है, ये आवाज है, ये बोल तो रही है, गा तो रही है, चाहे कुछ भी हो, दिया बुझा है परंतु एक चिंगारी की आवश्यकता है, और वो अगर आ जाए तो फिर से ये दिया जल जाए, नाव कितनी ही जर्जर है परंतु लहरों से टकरा तो रही है। तो पिछली बार हमने देखा था बरमुडा ट्रायंगल, किसका? रावण का। जैसे वो बरमुडा ट्रायंगल था जिसमें कोई भी नाव चली जाए या कोई भी जहाज ऊपर से जाए तो कहा गया है और देखा गया है, और विस्तार से हमने पिछली बार बहुत सारी बातें, तथ्य, कारण और विज्ञान क्या कहता है, उन सब की चर्चा की थी बहुत विस्तार से। आज वो चर्चा फिर नहीं करेंगे। तो 6 ट्रायंगल, त्रिकोण, त्रिभुज हमने देखे थे, जिसमें यदि ब्राह्मण आत्मा उड़ते उड़ते ऊपर चले जाए तो लापता, गायब, या तो अपने स्टीमर नाव में बैठ कर चले जाए तो गायब। कौन कौन सी वो ट्रायंगल थे? पहला आलस, प्रमाद, नींद, ये पहला ट्रायंगल था। यदि इसमें कोई चला जाए ऊपर तो गायब, या फिर लापता, या फिर गुम हो जाएगा तीव्र पुरुषार्थ से। दूसरा ट्रायंगल देखा था आकर्षण, विकर्षण और घर्षण, किसी से अत्यधिक आकर्षण हो जाना, क्योंकि जिससे आकर्षण होगा उसके विचार तो चलेंगे, इसके लिए हमारा इंटरैक्शन दूसरों के साथ स्पिरिचुअल लेवल पर हो। जब भी मैं ये सोचता हूं मुझे इनकी देखभाल करनी है, आकर्षण चालू। जब भी मैं ये सोचता हूं कि ये बहुत अच्छे हैं और मुझे इनके साथ रहना है और ये मेरे हैं और ये मेरे अपने हैं, ये जो पजेसिवनेस है, जैसे ही विचारों में आएगा आकर्षण चालू होगा, और यदि इस आकर्षण में कोई विघ्न डालता है तो विकर्षण होगा, संघर्ष भी होगा, घर्षण। तो दूसरा ट्रायंगल ये था, यदि इसके बीच में चले गए तो गायब, फिर पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके साथ ही सूक्ष्म माया के रूप आएंगे और माया जैसे जैसे कैसे आएगी ये भी नहीं पता चलेगा। आज सुबह की साकार मुरली है तुम, अव्यभिचारी राही हो शिव बाबा के घर के, तुम अव्यभिचारी राही हो शिव बाबा के घर के, तुम परम धाम के फॉरेनर्स हो, तो फिर वो अव्यभिचारी नहीं रहेगा, उसमें कोई दूसरा आ गया। फिर मैं ये भूल रहा हूं कि ये भी आत्माएं हैं और आत्माओं पर अपना अधिकार मुझे सिद्ध करना है। इस संसार की किसी भी आत्मा पर मेरा कोई अधिकार नहीं, पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार संबंधी सब आत्माएं हैं और अपना अपना पार्ट है। जैसे ही मैं अधिकार सिद्ध करूंगा दुख को मैं निमंत्रण दे रहा हूं। जैसे ही मैं किसी को कहूंगा तुम मेरी हो तुम मेरे हो, एक द्वार खुल रहा है दुख का। आकर्षण विकर्षण घृणा नफरत, तुम्हें किसी से घृणा नहीं हो सकती, तुम परमात्मा संतान हो। चाहे रावण हो कंस हो जरासंध हो शिशुपाल हो जयद्रथ हो पूतना हो शूर्पनखा हो दुर्योधन दुशासन शकुनी कोई भी हो मंथरा जटाऊ सुबाऊ कोई भी हो, हमें किसी से घृणा नहीं। घृणा के तल पर किसी के साथ इंटरेक्शन करना आत्मिक स्थिति नहीं है। यह दूसरा ट्रायंगल। तीसरा ट्रायंगल सी इविल, सी इविल। अच्छा, दूसरा देहभान देहाभिमान और देह अहंकार, ये तीसरा ट्रायंगल। चौथा सी इविल, टॉक इविल एंड डू इविल। तीनों ही चीजें हम कर रहे हैं और इसमें अगर बीच में हम चले गए तो बूम लापता गायब, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा वो बरमूडा ट्रायंगल है। अगला डिप्रेशन, अरे हम ये डिप्रेशन फर्स्ट रिप्रेशन और इंप्रेशन। किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे या किसी का इंप्रेशन बड़ों के सामने खराब करने की कोशिश कर रहे, दूसरों को किसी की ऐसी बातें बताना कि उसके मन में यदि उस आत्मा के प्रति अच्छे भाव थे वो हमने बिगाड़ दिए और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमने कितना पुण्य का काम किया है कि उसे अज्ञान से निकाल कर उसे सत्य जानकारी दे दी, खड्डे में गिरने से बचाया। पर किसी एक आत्मा का इंप्रेशन किसी दूसरे आत्मा के मन में खराब कर देना, किसी का मन किसी के प्रति मैला कर देना, ये पुण्य की श्रेणी में आएगा या पाप की श्रेणी में आएगा? हम किसी को बहुत मानते हैं और कोई दूसरा आके हमें उस व्यक्ति के विषय में ऐसी ऐसी बातें बता देता है कि फिर हमारा उस व्यक्ति के साथ हम जब भी उसको देखेंगे वो सारी बातें याद आएगी। अब तक नहीं याद आती थी, अब याद आएगी। जैसे एक लकड़ा आ रहा है, उसके पास कुल्हाड़ी है, वो जंगल में जाता है कि लकड़ियां काटता है और वहीं उसके घर के ही बाजू में एक दूसरा घर है, वहां एक लड़का है, वो रोज उस लड़के को देखता है और एक दिन बाजार में किसी से सुनता है वो लड़का बड़ा शरारती है और एक दिन जब घर पहुंचता है देखता है उसकी कुल्हाड़ी है ही नहीं, उस लड़के की तरफ तसर देखता है तो उसको लगता है यही होगा और बहुत सोचने लगता है उसके विषय में। रोज देख रहा था तब नहीं सोच रहा था, आज उसकी दृष्टि ही अलग है, उसकी तरफ देख रहा है कि वो क्या करता है कैसे करता है और उसके विषय में विचार कर रहा है। शाम तक सोचता है, फिर सोचता है अब इसके पास जाऊंगा और इसके मां बाप से पूछूंगा और उतने में उसकी कुल्हाड़ी मिल जाती है और जब कुलाड़ी मिल जाती है फिर उस लड़के को देखता है कि सोचता है कितना मासूम है ये लड़का, कितना अच्छा है ये लड़का, बदल गया इंप्रेशन। रिप्रेशन दमन जिसकी हमने चर्चा की थी, और डिप्रेशन उदासी, गहरी उदासी है, पता नहीं चलता है कारण क्या है, बता नहीं सकते किसी को क्यों उदास है, परंतु उदासी तो है। किसने सुनाया था स्थिति का ब्लड प्रेशर लो है और दिल शिकस्त का पसीना बह रहा है अंदर से, स्पिरिचुअल हार्ट अटैक, आध्यात्मिक दिल का दौरा, पर किसको बताए? बताइए, लोग कहेंगे अरे तुम मुरली नहीं पढ़ते, तुम्हारा योग नहीं है, पर उदासी तो है, पर कारण क्या है पता नहीं, डिप्रेशन। उसके बाद में परचिंतन, प्रदर्शन, परमत, ये बरमुडा ट्रायंगल, परचिंतन और परदर्शन पतन की जड़ है। The other is hell. सारा ध्यान स्व पर हो, दूसरों पर नहीं। वो क्या कर रहे है, वो क्या करता है, उसने क्या किया, इस पर के पर काटना इस ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ है। दूसरा क्या करता है, दूसरे ने क्या किया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे केवल उससे लेना देना है भगवान क्या कहता है, और वो मुझे करना है बस। दियादर से बुद्धि को हटाना है, और यदि हम देखें अपनी दिनचर्या को तो सारा दिन हमारा ध्यान दूसरों की तरफ है, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों के गुप्तचर बन के हम विचरण करते हैं। तो परदर्शन, परचिंतन, परमत, छह हो गए, इतने ही छह के। आज हम आगे के छह की डिस्कशन करेंगे। ईटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सकर्शन, ये एक बरमुडा ट्रायंगल है। ईटिंग अर्थात भोजन, इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थात डिजिटल वर्ल्ड, और एक्सकर्शन अर्थात घूमना फिरना साइट सीइंग। ये भी एक जबरदस्त त्रिकोण है, और न मालूम कितनी आत्माएं इसमें फंसी हुई है। ब्राह्मण बनना अर्थात भोजन ही इस जीवन का सबसे बड़ा रस और आनंद है। कल्पना नहीं की जा सकती, अगर इसको हटा दिया तो क्या हो जाएगा ब्राह्मण जीवन, सोचेंगे शायद व्यर्थ में ही ब्राह्मण बन गए, इतना भोजन का प्रभाव, भोजन की गिरफ्त में सब बंधे हैं। वैसा ही है इलेक्ट्रॉनिक्स, सेवा का सर्वोत्तम साधन है, परंतु माया का द्वार भी वही है। और तीसरा, इधर जाओ उधर जाओ, ये देखो वो देखो, घूमना फिरना। तो सबसे पहला है ईटिंग, योगी अर्थात जिसका भोजन नियमित संयमित मिताहार हो, कम हो। योगी अर्थात जिसके भोजन के विषय में कम से कम संकल्प हो, जो निरंतर भोजन के विषय में सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, बनाने की तैयारी में लगा हुआ है, या बनाने में बहुत ज्यादा समय दे रहा है, या किसने बनाया और क्या बनाया उस पर नजर है, और कहां क्या बन रहा है उस पर नजर है, 24 घंटे के विचारों में आधा भाग तो भोजन के संकल्पों से है, मुरली में बैठे हैं परंतु नाश्ते का चिंतन करते ही मुख में पानी, कितना समय उसमें जा रहा है, और जो खा रहा है वो उतना नहीं खा रहा है जितना उसे चाहिए, ओवर ईटिंग हो रहा है, ओवर ईटिंग। एक स्टडी हुई है समोसा नहीं मसाला डोसा और इडली, उस स्टडी में पाया गया जब मसाला डोसा बनता है लोग ओवर ईटिंग करते, वैसे व्यक्ति को दो से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग हो जाती है, जितनी कैलोरीज वो कंज्यूम कर जाता है क्योंकि उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता है उसका। अनकंट्रोल्ड ओवर ईटिंग ये माया का द्वार है। इसमें डायरेक्ट विकारों की प्रवेशता तो नहीं होगी, परंतु आलस, प्रमाद, एक्साइटमेंट, इंद्रियों की चंचलता और एडिक्शन और क्रेविंग। ऐसा नहीं एक बार आज खा लो फिर उस कल से नहीं खाएंगे, एडिक्शन क्रिएट करता है, क्रेविंग क्रिएट करता है, तलब, वो फिर चाहिए फिर चाहिए फिर चाहिए, खींचता है, झूठ बोलने में मजबूर करता है। भोजन झूठ बोलने का एक कारण है, देहभान का कारण है, टेस्ट कॉन्शियसनेस का भी कारण है। कहां तो आत्माभिमानी स्थिति और कहां तो भोजन अभिमानी स्थिति। टेस्ट कॉन्शियसनेस, फूड कॉन्शियसनेस, दिन रात उसी का चिंतन, यह भी माया का एक द्वार बन जाता है। योगी अर्थात रसों को जिसने जीता है, और सारा खेल यहां तक है बस टेस्ट का। इसके बाद यहां चले जाए और नाक में नली डालते हैं ना मेडिकल में, राइल्स ट्यूब, उसको पूछो क्या टेस्ट है, कोई टेस्ट विस्ट पर पता नहीं उसे। टेस्ट की गुलामी, बहुत कम आत्मा इससे निकली है, क्योंकि जैसे काम विकार है 2500 साल से बंदी ग्रह में बंद करके रखा है, टेस्ट के बंदी ग्रह में भी 2500 साल से आत्मा बंदी में बंधन में है। नियमित, संयमित, उचित, मिताहार और सम्यक आहार, ये सारे शब्द है योगी के। सम्यक आहार में तीन चीजें जो हमेशा हम कहते होनी चाहिए, सम्यक अर्थात राइट डाइट। पहली, वो भोजन ना हो जिससे आलस और प्रमाद और निद्रा आए, खाया उसके बाद में नींद। दूसरा, वो भोजन जिससे उत्तेजना ना हो, अगर वो भोजन से उत्तेजना होती है, बहुत प्यास लगती है और जिसमें बहुत नमक है और जिसमें बहुत मसाले और जिसमें तेल ही तेल है, विषय वैतरणी नदी से निकलकर तेल वैतरणी नदी में डुबकी लगा रहे हैं, जिसको चार चार बार गर्म किया हुआ है, पहले आलू को गर्म किया, फिर उसकी सब्जी बनाई तब फिर उसको गर्म किया, फिर उसको समोसे में जब डाला तब उसको फिर गर्म किया हुआ है। कोई चीज गर्म करने से बढ़ती है या कम होती है? ये लकड़ी को गर्म करो क्या होता है, कम होगी या ज्यादा होगी? घर को जलाओ कम होगा या बढ़ेगा? गरम कर करके और उसमें भी वापस गरम करो, जितना ज्यादा गरम उतना ज्यादा एडिक्शन, जितनी बार पकाओ उतना अधिक एडिक्शन। एक ही चीज को चार चार बार प्रोसेस देखो, चार चीजें ली जा रही है, चारों चीजों के बनने की प्रोसेस को यदि स्टडी किया गया, हर एक को जलाया गया है, हर एक में अलग से तेल डाला गया है और हर एक में अलग से नमक डाला गया है, ओवरऑल जो खाया जा रहा है उसमें तेल की मात्रा बहुत ज्यादा है, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसमें तीखा है, उसमें मसाले है और वो एडिक्टिव है, वो खींचने वाला है। आज खाया कल बंद हो जाए ऐसा नहीं होगा, उसकी याद रहेगी, खींचेगा अपनी तरफ। योगी अर्थात जिसकी इंद्रिय क्या हो गई है, शीतल। और तीसरी बात, वो भोजन जो स्वास्थ्यवर्धक हो। ये तीन बातें हैं भोजन के विषय में, उत्तेजन आलस लाने वाला ना हो, उत्तेजना उत्पन्न करने वाला ना हो, और तीसरा स्वास्थ्यवर्धक हो, नरिशिंग फूड। यदि कोई इसमें डूबा है तो थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयत्न करना है, थोड़ा सा, धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा। कोई भी डाइट तुरंत कभी भी चेंज नहीं करना। डाइट रिवॉल्यूशन नहीं है, इवोल्यूशन है। रिवॉल्यूशन नहीं करना, क्रांति। क्रांति करोगे तो धड़ाम से नीचे। इवोल्यूशन अर्थात धीरे 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 बदलना उसको। और ऐसा कहा जाता है कि आप व्यक्ति के धर्म को बदल सकते हो, पर डाइट को नहीं बदल सकते। धर्म परिवर्तन संभव है, डाइट परिवर्तन संभव नहीं है। कितना डूबा हुआ होता है व्यक्ति इसमें। और ओवर ईटिंग संयम की श्रेणी में नहीं आता है। आज ठीक नहीं बना, भोजन को देखते ही मूड ऑफ, भूखी नहीं है। क्या ये योगी के लक्षण है? हम तो कहते हैं ब्रह्मा भोजन है। तो क्या ब्रह्मा भोजन वही होगा जो बहुत टेस्टी है? तब ब्रह्मा भोजन है, और जब टेस्टी नहीं तब हमारे पसंद का नहीं है, पेशेंट वाला भोजन। स्टडी करना है अपने भोजन की भी, नहीं तो वही माया का एक द्वार है। दिन रात उसी का चिंतन, दिन रात वही सोच, दिन रात एक्साइटमेंट, टेस्ट कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, क्रेविंग और बीमारियां। बाबा की याद में बनाने वाले और खाने वाले बहुत ही गिने चुने हैं। कौन किसकी याद में बना रहा है पहले ये देखो, किसकी याद में बनाया जा रहा है। ढेर सारे लोग बना रहे हैं, कौन किसकी याद में? कोई अपने बेटे को याद कर रही है, बेटे तो है बाबा के भंडारे में, पर याद किसको किया जा रहा है? किसी को रोटी बनाते बनाते अपने बेटा बेटी याद आ गई और आंसू आ रहे हैं। अभी अभी शिव बाबा की याद थी, अभी बेटे की याद है। फिर दूसरे ने ओवरटेक किया, बीच में आ गया 4-10 मिनट के लिए सेवा करने, वो पता नहीं किस संकल्प से आया था और वो बना के चला गया। फिर दूसरा कोई आया, फिर तीसरा कोई आया, तो ढेर सारे लोगों के वाइब्रेशंस उसमें है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर याद में बनाया जाए तो शक्तिशाली है, परंतु याद में बनाया हुआ और याद में खाया हुआ ये भोजन शक्तिशाली है। दुख भंजक भोजन, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है भंडारे में, कौन सी मुरली है आशीष भाई? 18 फरवरी 1988, अव्यक्त वाणी ब्रह्मा भोजन पर। यह भोजन दुखभंजक भोजन है, यह दवा भी है, यह दुआ भी है, परंतु यदि वो भोजन याद में बनाया जाए और याद में स्वीकार किया जाए तो भोजन। दूसरा बताया इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल डिटैचमेंट। लंबी क्लास कराई है मंजू बहन ने इस पर। ऑक्टोपस ग्रिप, पकड़े हुए, जकड़े हुए, एक ही देखना है, हमारा टाइम सोशल मीडिया पर इतना ना चला जाए कि पुरुषार्थ का अपहरण हो जाए, हाईजैक करके ना ले जाए हमारा पुरुषार्थ ये डिजिटल वर्ल्ड। और एक समय ये नहीं रहेगा, ये भी सोच के रखना है। एक समय आएगा कुछ भी काम नहीं करेगा। ये जो मोबाइल है, इसमें इंटरनेट नहीं, इसमें रेंज नहीं, नेटवर्क नहीं, तो क्या ये डब्बा बन जाएगा एक, बस और कुछ भी नहीं, पड़े रहेंगे ऐसे और कोई उठाएगा भी नहीं। बच्चों को सबसे पहले, बच्चों के हाथ में ये चला गया मतलब गए, वो क्या देखेंगे? पेरेंटल कंट्रोल होता है एक, वो इंस्टॉल करना चाहिए। बड़ों बच्चों को पहले से ही ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए, नहीं तो बचपन से ही अगर उनको छोड़ दिया, गिफ्ट्स में फर्स्ट आया गिफ्ट्स में मोबाइल विद इंटरनेट फ्री, और जितना जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे उनके लिए और खतरा है, क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है और क्यूरियोसिटी विल डिस्ट्रॉय देम। क्यूरियोसिटी में जानना चाहते क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, हर चीज को जानना चाहते, हर चीज को समझना चाहते। जितने पेरेंट्स है बीके, उन सब की एक ही समस्या है, ये बच्चों का क्या करे। स्कूल वालों ने कंपलसरी किया, इसलिए उसको उसको हम ट्रेनिंग ही ऐसी दे कि उसको क्या पढ़ना है, उसकी रुचि किस में है। जैसे हम उसको पहले से ही डेवलप करें उसका इंटरेस्ट रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स, लिसनिंग मोटिवेशनल ऑडियोज, वीडियोज, उसका इंटरेस्ट ही चेंज कर दे ताकि जब वो उसके हाथ में रहे तो वो देखे ही वो सारी चीजें, वो पढ़े ही वो सारी चीजें, सुने ही वो सारे गीत, संसार के गीत के प्रति उसको अरुचि हो जाए, इंटरेस्ट ही ना हो। उसको ट्रेनिंग ही बचपन से ऐसे, घर का वायुमंडल ही ऐसा बना दे, माँ बाप ही दोनों भाग रहे हैं, 8 घंटा नौकरी कर रहे, बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं, वो बच्चे अपने दोस्तों के साथ, और बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत शार्प है और सेंटर पर भी कभी कभी आते हैं, परंतु शार्प है अर्थात इधर भी ढूंढने में शार्प रहेंगे, फिर खोज में भी शार्प रहेंगे, विकारों की खोज करेंगे है क्या, क्यूरियोसिटी, जानने की कोशिश करेंगे, और वो जानना ही बरमूडा ट्रायंगल में फंसना है। इसलिए टू बी अ पेरेंट इज द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम जो करेंगे हमें देखकर वो बच्चे करेंगे, जैसे वायुमंडल होगा घर का वैसा ही वो करेंगे। हाँ, वो एक दूसरी बात है कि उसका क्या भाग्य, ये भी हमें याद रखना है कि वो अपना भाग्य लेकर आया, उसका अपना पार्ट है। यूअर चिल्ड्रेन आर नॉट यूअर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। खलील गिब्रान की कविता है कि तुम्हारे बच्चे तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है। इसके लिए ये भी ध्यान रखना कि उनका अपना पार्ट है, उनका अपना भाग्य है, वो आत्मा है, वो कोई मेरा उस पर कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो ट्रैप है ये। तो इलेक्ट्रॉनिकल जितने भी डिवाइसेस है उसको थोड़ा सा ध्यान से, आजकल लोग दिन रात कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, चलन हो गया है वो एक, और टाइम कितना जा रहा है उसमें वेस्ट। तीसरा बताया एक्सकर्शन, पिकनिक, घूमना फिरना, यहां जाऊं वहां जाऊं, ये देखू वो देखू। हां, यदि वो हम ज्ञान युक्त रीति से कर रहे हैं तो ठीक है, पर केवल जाने का लक्ष्य है साइट सीइंग, केवल लक्ष्य, गए फोटो वीटो खींची और चले, ना तो प्रकृति का आनंद लिया, ना तो सौंदर्य देखा प्रकृति का, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, बस हाथ रख के फोटो और चलो घर, हाँ, और बाद में दूसरों को दिखाएंगे ये हम यहां घूम के आए, इसका क्या मतलब है, इट्स वेस्ट, अटर वेस्ट। इस चक्र से, इस चक्र तो नहीं त्रिकोण से बाहर निकलना है, चक्र की आदत है तो इस त्रिकोण से हमको बाहर निकलना है, तो ये सातवां। उसके बाद में इफेक्ट, डिफेक्ट, निग्लेक्ट। इफेक्ट अर्थात प्रभावित हो जाना, किसी व्यक्ति से प्रभावित होना, किसी क्लास से, किसी की आवाज से, किसी के गीत से, किसी की सेवा से, किसी के गुण से, किसी के हुनर से, किसी की स्किल से, किसी की बातों से प्रभावित हो जाना, इफेक्ट आ जाना, ये ट्रैप है। कोई कितना भी अच्छा हो पर दिया किसने उसको, किसमें कितने भी अच्छे गुण होने दो, हम ये क्यों भूल रहे हो कि दाता ऊपर बैठा है, ध्यान उस दाता की तरफ हो ना कि उस व्यक्ति की तरफ। इफेक्ट में नहीं आना है, नो इफेक्ट। और दूसरी एक चीज, परिस्थितियों के जैसी बदलती रहेगी उसका हम पर असर ना हो, हमारी अंदर से आंतरिक सूक्ष्म साधना चालू हो। अव्यक्त मास आ रहा है, विदेश में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी चालू होगा 1 तारीख से, 1 मास का या 18 दिन का शायद, कि हर घंटे में 10 मिनट विश्व को सकाश देनी है, बड़ा भारी प्रोजेक्ट है, हर घंटे में 10 मिनट्स ऑफ साइलेंस। इफेक्ट नहीं आने देना है, और यदि आ रहा है, हम टच भी नॉट प्लांट है, वो छुई मुई है, फटाफट इफेक्ट हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया उदास, किसी ने कुछ गलत व्यवहार कर दिया उदास। दुख लेना क्या ये श्रीमत है, दुखी हो जाना, क्राइंग योग की धूप से, कहां ये धूप निकल ही नहीं रही है ठंडी बहुत है, आलस अलबेलेपन की ठंडी बहुत ज्यादा है, आंसुओं की टंकी कहां क्यों नहीं सूख रही है। तो इफेक्ट, उसके बाद में डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट अगर रह जाता है, मेरे अंदर कोई डिफेक्ट है, कोई सूक्ष्म डिफेक्ट। इसलिए यदि कोई आकर हमको क्रिटिसाइज करे और कोई करेक्ट करे तो कितना उसका धन्यवाद देना चाहिए, कितनी बड़ी रिस्क लेकर उसने वो काम किया, नहीं तो कौन हमको बताता। बुरा तो लगेगा थोड़े देर के लिए, परंतु बहुत फायदे वाली चीज कर गया वो। फ्री टिप्स, फ्री एडवाइस, इतनी बड़ी संबंधों की रिस्क, संबंधों को दांव पे लगाकर बता के गया हमारी खातिर, कितना त्याग ही है। तो डिफेक्ट्स, अपने अंदर रही हुई सूक्ष्म कमियों को ढूंढना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि हमें अपनी कमियों का पता नहीं चलता है। कोई बताए तो उस पर गुस्सा आता है। और तीसरा निग्लेक्ट, निग्लेक्ट करना श्रीमत को, मर्यादा को, भूले रहना कि मर्यादाएं क्या है। कोई एक ऐसा संबंध बना देना किसी व्यक्ति से और उस संबंध में आगे बढ़ते जाना, बातें बढ़ाते जाना, फोन कॉल्स, चिट चैट, व्हाट्सएप कॉल्स, टॉकिंग, वीडियो कॉल्स। वीडियो कॉल किस लिए? चेहरा देखने के लिए, आत्मा देखने के लिए वीडियो की आवश्यकता नहीं है। मर्यादाओं को भूलना, सेवा के नाम, ऊपर से सेवा का नाम, अंदर कुछ और। हम दोनों साथ में सेवा करते हैं, हम दोनों साथ में ये करते हैं, पर अंदर से कुछ गलत या कुछ और ही चालू है, अंदर कुछ बाहर कुछ, खौफनाक व्यक्तित्व। तो इफेक्ट, डिफेक्ट और निग्लेक्ट, इससे ये भी एक बरमूडा ट्रायंगल है जिसमें अगर चले गए तो गए। तो ये आठवा। उसके बाद में नेक्स्ट बरमूडा ट्रायंगल ब्राह्मण जीवन का, इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, शैतान का त्रिकोण। नेक्स्ट नाम, मान और शान। हमारा नाम हो जाए, दूसरे हमको क्या करे, मान। लास्ट संडे की मुरली थी सेवाधारी की, कुछ निशानियां बताई थी। सबसे पहली निशानी थी निर्मान, जिसे मान की कोई इच्छा नहीं है, जो स्वयं निर्मान है उसके पीछे मान स्वतः आता है, वह स्वयं उसे, उसका झुकना दूसरों को झुकाएगा, उसे किसी को झुकाने की आवश्यकता नहीं है। तो जहां नाम की इच्छा है कि बहुत नाम हो जाए, उसके साथ ढेर सारी माया चालू होती, क्योंकि नाम बनाने के लिए, करने के लिए हम ऐसी सेवा करें उसके पीछे लक्ष्य है कि नाम हो जाए। जैसे महाभारत में दिखाया है, बीच में कहीं जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाता है तो दुर्योधन बहुत क्रोध में है, तो उसके मामा उसको एक युक्ति बताते, अब तुम एक काम करो, युधिष्ठिर की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, अब तुम लोकप्रिय होना चाहिए, तुम दान देना चालू करो। राजकोष से सारा खजाना वो खाली करने लगता है, जो भी आए उसको दान 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 दान। पर दान देने के पीछे उसकी जो मंशा है वो कोई वैसी नहीं है निस्वार्थ, वो कुछ चाहता है उसमें कि मेरा नाम मिल जाए, मुझे क्यों, मैं पॉपुलर नहीं हो रहा हूं, जैसे युधिष्ठिर इतना लोकप्रिय हो रहा है मैं क्यों नहीं हो रहा हूं। तो नाम की कामना बहुत ही भटकाएगी व्यक्ति को, कुछ कुछ करने लगाएगी जो उसने सोचा नहीं था वो। फिर मान, मान मिले, हम जाए तो लोग खड़े हो जाए, खड़े ही नहीं हुए। एक नेताजी गए, भाषण दिया धुआंधार, और उसके बाद में लोगों ने मालाएं पहनाई, और फिर उसके बाद में वो इतना दुखी, तो लोगों ने पूछा उसके साथियों ने, क्यों तुम दुखी हो, इतना अच्छा भाषण हुआ, स्वागत भी हुआ। उसने कहा, पूरे 12 हारों का पैसा चुका था, 11 ही डाली गई, 11 भी, एक कहां गई हार, एक हार कहां गया। हाँ, फिर पैसे तो देके करना पड़ता है सब एक माला कम थी तो। और शान, शान अर्थात प्रतिष्ठा, शान अर्थात पोजीशन, शान अर्थात हम ये है, हम वो है, हम याऊ है, हम त्याऊ है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसी भी सेवा की, हमने वो भी सेवा की, हमारा ये हमारा सेवा है, ये हमारा रिपोर्ट है। तब तक ये देखो हम घूम के आते हैं, ये हमारे सेवा का रिपोर्ट, बड़ी प्रगति पत्र, हा? फोटो एल्बम, ये देखो हम यहाँ पे, ये भी आके गया, वहां पे वो भी आके गया, हमारा इसके साथ भी फोटो है, हमारा उसके साथ भी फोटो है। बड़ा शान, तो ये भी सूक्ष्म शान की इच्छा, ये भी एक ट्रैप है नाम का। नाम हो जाए, मान, बहुत मान मिल जाए और शान, पर ये गिराने वाले हैं सब। जैसे एक व्यक्ति होता है जो झाड़ पर चढ़ जाता है ऊपर और वहां से निकल नहीं पाता फिर, क्योंकि वो इतना ऊंचा झाड़ होता है, नीचे देखता है तो डरता है, कैसे उतरू अब, तो भीड़ इकट्ठा, वो चिल्लाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अभी इसको कैसे निकाले। तो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति आता है, वो कहता है मुझे पता है, मैं हमेशा ये चीज करता हूं, इसके पहले भी ऐसा हुआ था, मुझे चांस दिया जाए। तो बोलते हैं अच्छा, तो रस्सी लेके आओ। रस्सी लाता है, फेंकता है ऊपर और उस व्यक्ति को कहता है पकड़ो, तो वो पकड़ता है। बोलता है आप क्या करना है, मैं जैसा बोलता हूं वैसे करते जाओ, अपने कमर में बांध लो। बोलता है बांध लिया, अब आप कुछ नहीं, और वो जोर से खींचता है उसको और धड़ाम से नीचे गिरता है वो। वो कहता है ये कैसी युक्ति थी नीचे लाने की, ये तो फ्रैक्चर हो गया क्या आपको, आर यू श्योर कि ऐसा ही किया था। वो कहता है आप कहते हो ना हमेशा करता हूं, हाँ हमेशा तो कहता हूं, केवल ये याद नहीं था कि पिछली बार वो आदमी झाड़ पे था या कुएं में था। क्योंकि पिछली बार तो बाहर निकल गया था क्योंकि कुएं से निकाला था उसको, पर इस बार वो ऊपर है। तो हम किस पर विश्वास कर रहे हैं और कौन हमको बचा रहा है या गिरा रहा है, ये सारी चीजें बचा रही है या गिरा रही है, ये खुद ही जज करना है, सोचना है, समझना है। तो ये एक ट्रायंगल है। अगला ट्रायंगल है जिस पर एक पूरी क्लास हुई थी, कोटेशन, क्वेश्चन और करेक्शन, दूसरों को कोट करना, इसने भी तो ऐसा किया, ये भी तो ऐसा करते, ये 20 साल से यहां पर रहती है, ये ऐसा करते हैं, ये भोजन करते समय बात करते, हमने किया तो क्या हुआ, इनको हमने सोते हुए देखा, कल हमने किसी को देखा वो ये पूरी शाल ऊपर से नीचे तक योग में चेहरा था ही नहीं, पूरा ऊपर से कंप्लीट ढाला हुआ ठंडी के वजह से। नहीं, कल हमने देखा एक पूरी शॉल ऊपर से कंप्लीट नीचे तक, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, केवल शॉल। कौन पूछे कंप्लीट अशरीर, ये भी नहीं पता कि शॉल ऊपर है, ऐसी पावरफुल बीज रूप स्थिति गुप्त। तो कोट करना, दूसरों ने ये किया, इसने ये किया, ये भी बहन ऐसी करती है, ये इतनी पुरानी है, हमने किया तो क्या हुआ, गोदनी में करता था। फिर दूसरा है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है जीवन में, इतने प्रश्न, इतने प्रश्न, इतने प्रश्न है, यहां ऐसा क्यों, वहां वैसा क्यों, मधुबन में ऐसा होता है, वहां वैसा होता है, ये लोग ऐसा करते हैं, और अपने जीवन के ढेर सारे प्रश्न है और इन कोई प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। क्योंकि जिसके पास प्रश्न लेके जाते हैं वो जो उत्तर देते हैं उसमें से 10 प्रश्न और निकालते हैं और फिर किसी दूसरे के पास जाते हैं पूछने, प्रश्नों के जंगल में घूम रहे हैं। जीवन प्रश्नमयी है, प्रश्नचित्त, प्रसन्नचित्त नहीं, प्रश्नचित्त। तो ये जंजाल है। और तीसरा बताया करेक्शन, दूसरों को ठीक करना, दूसरों को जाके बताना तुम सो रहे थे योग में, ध्यान रखना अगली बार से। अब जिसको बता दिया वो इस अवसर की खोज में है कि ये कब सोता है, जिसने मुझे बताया मुझे करेक्ट करना है वो नहीं है, क्योंकि यहां प्रश्न अब सोने और जागने और योग का नहीं रहा, यहां अहंकार की लड़ाई चालू है अब, कि इसने ऐसा क्यों कहा और कहा कैसे कहा, इसकी इतनी जरूरत। एक बार हम बैठे थे मेडिटेशन हॉल में, तो दो भाई बैठे थे सामने, तो एक बहुत हो रहा था तो दूसरे ने उसको एकदम डांटा, उठ एकदम। तो वो डांटने के बाद वो एकदम जागा और वो तो थोड़ी देर के बाद जिसने जगाया था वो सो गया। फिर अब मजा आया इसको, अब तुम जागो, बदला पूरा हुआ ना, मुझे जगाते हो। तो कोटेशन, दूसरों को गलत कोट करना, और दूसरों को क्वेश्चन से जीवन भरा हो, और तीसरा करेक्ट करना, दूसरों को करेक्शन करने की हमको कोई जरूरत नहीं, और दूसरों को करेक्ट करना भी है तो उसकी बहुत बड़ी विधि है, फोर स्टेप्स अव्यक्त वाणी। पहला, खुद स्वमान में स्थित हो जाओ, फिर दूसरा उसको स्वमान में स्थित कराओ, फिर तीसरा उसकी महिमा करो, और फिर शिक्षा दो। सीधा हल नहीं चलाओ, पेशेंस तो चाहिए। नहीं, हमको कुछ करना ही नहीं, हर एक का पार्ट है, सोने तो जिसको सोना है, बाद में हम समय देखकर उचित समय पर बताना है, क्योंकि किस तरह बताया जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस समय बताया जाता है उसका मूड देखकर, अच्छा मूड है तब जाके बताओ। और हम ही सो रहे हैं तो वो हमको पकड़ लेगा एक दिन, और यहां पे बड़ी गहरी चोट लगती है। योगी को यदि कोई बताए, उसके योग के ऊपर आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते उसके योग को, हाथ लगा दिया तो गए। तो ये एक ट्रायंगल है। उसके बाद में नेक्स्ट, इस पर भी एक बार क्लास हुई थी, मल विक्षेप आवरण। मल अर्थात इंप्यूरिटी, विक्षेप अर्थात डिस्ट्रैक्शन, आवरण अर्थात कवरिंग। ये तीन प्रकार की माया है। मल अर्थात अगर अंतर मन में इंप्यूरिटी है, अभी अपवित्र संकल्प आते हैं, देह के संकल्प आते हैं, देह को देखने की इच्छा होती है, देह को स्पर्श करने की इच्छा अब भी है बची हुई, देह के प्रति संपूर्ण वैराग नहीं है, देह से उपराम स्थिति नहीं है, ये इंप्यूरिटी ब्राह्मण जीवन में पाप या अपराध की श्रेणी में है। बाकी सब ठीक है, पर यह है यदि संकल्पों में और स्वप्न में ब्रह्मचर्य का खंडन हो रहा है अब भी, जबकि समय अंतिम सांसें ले रहा है, वर्ष भी अंतिम सांसें गिन रहा है, नया वर्ष का आगमन होने वाला है, और एक काम करना है, अगले 2-3 दिन में ये पूरे साल में हमने जो गलतियां की है उसका चिंतन करना है, कौन सी गलतियां हमसे हो गई पूरे साल, 1 जनवरी 2018 से आज तक, क्योंकि यदि हमने उन गलतियों से नहीं सीखा तो नए वर्ष में फिर हम वो गलतियां करेंगे। गलतियां करना पाप नहीं है, एक बार गलती करना ठीक है, पर वही गलती दूसरी बार करना ये तो पाप है। इसके लिए वर्ष की समाप्ति है, युग की समाप्ति, इस वर्ष के युग की, नया युग चालू हो रहा है, नए युग का स्वागत हमें नए उमंग उत्साह से करना है। जिस गांव में हम रह रहे हैं, उस गांव से अभी विकारों के जो गांव, व्यर्थ के जो गांव, महाभारत में दिखाया है वो शिशुपाल, जरासंध बार बार आक्रमण करता है मथुरा पर, कंस वध के बाद कृष्ण कहता है कि अभी हमें यहां से दूर कहीं जाके बसना है, द्वारिका में। सब लोग विरोध करते, अरे क्या हम कायर है, वो कहता है नहीं, हमारा मथुरा में रहने का युग अब समाप्त हुआ, मथुरा में रहने का हमारा युग समाप्त हुआ, इस विकार की नगरी में रहने का युग हमारा समाप्त हुआ, इस व्यर्थ की नगरी में रहने का युग समाप्त हुआ, इस डिजिटल शहर की गलियों में भटकने का युग समाप्त हुआ, अब नए युग की शुरुआत, नया युग आ रहा है, नया वर्ष आ रहा है, अव्यक्त मास की शुरुआत होने वाली है। आज कितना है, 29th, परसों बाबा आ रहे हैं, भगवान से मिलन, नए वर्ष की शुरुआत, प्लानिंग चाहिए, एक सॉलिड तगड़ी प्लानिंग, क्या करना है, नहीं तो नहीं करेंगे प्लानिंग तो वही 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 चीज रिपीट करते रहेंगे, वही गलतियां, वही पाप, वही अपराध, वही विकर्म, वही सूक्ष्म मर्यादाओं का उल्लंघन, और फिर पश्चाताप, फिर रोना, फिर आंसू, फिर भटकना, फिर इसको पूछ उसको पूछ। तो क्या बताया, मल, उस मल को निकालना है, इंप्यूरिटी, विक्षेप, विक्षेप अर्थात डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें, हमें अपने लक्ष्य से भटकाने वाली कौन सी चीज है, विक्षेप करने वाली। मैं जा रहा हूं, जैसे कोई पढ़ रहा है, किसी की एग्जाम है और बार बार मोबाइल भी चेक कर रहा है, मैसेज आ गया, पढ़ते पढ़ते इधर, फिर मैसेज आ गया, फिर इधर, फिर मैसेज आ गया इधर, डिस्ट्रैक्शन है ये। जो भी पुरुषार्थ के मार्ग में विक्षेप है उनको हटा देना है, नहीं तो ये एक बरमूडा ट्रायंगल है जिसमें फंस जाएंगे। और तीसरा बताए आवरण किसने ढक रखा है, अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है, मोह ने प्रेम को ढक रखा है, वासना ने शुद्ध चेतना को ढक रखा है। इस आवरण को हटाना है, कवरिंग को, विनियर को। तो मल, विक्षेप, आवरण, कितने हो गए, 12 हो गए, 11। एक और लास्ट फिर पूरा करते हैं। इसकी तो हम 12 तक इसको बनाकर छोड़ रहे हैं, पर इस ऐसे बहुत सारे आएंगे, जैसे आदि व्याधि उपाधि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये बहुत सारे मुरलियों में तीन तीन बातें आती है, पर पॉजिटिव वाली ज्यादा आती है, साकारी, आकारी, निराकारी, इस तरह की तीन तीन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन, तीन तीन बातों की बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ये भी एक काम आप चिंतन के लिए ले सकते हैं कि इसकी एक लिस्ट बनाई, कई लोगों ने बनाई भी है, परंतु हम खुद बनाए अपने चिंतन से, और रोज की मुरली से निकालकर, रोज की मुरली से निकालना है कुछ चिंतन की बातें, तीन तीन वाली बातें, ऐसी दो दो वाली बातें भी है और तीन तीन वाली बातें भी है, चार चार वाली भी है, पांच पांच वाली कम है। तो लास्ट जगदीश भाई की एक क्लास है, उसमें उन्होंने ये बात कही है, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन और डिस्टॉर्शन, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन और डिस्टॉर्शन। वैसे हमने ये वाली पॉइंट दूसरी जगह कवर भी किए, आकर्षण में आ गया या डिस्ट्रैक्शन में भी आ गया, पर उन्होंने खास एक विशेष एक क्लास इस पर कराई है, अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें एक डिस्टॉर्शन एक नया शब्द है। डिस्टॉर्ट करना अर्थात तोड़ मरोड़ देना चीजों को, जैसी चीज है वैसा नहीं कर देना, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना, जो सत्य है उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसको कहते हैं डिस्टॉर्ट द ट्रूथ, द फैक्ट्स। जैसे बाबा ने कहा है वैसे ना लेकर उसके साथ में अपनी मत, उसकी मिलावट करना और कुछ 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 उसमें करते जाना। तो ये सारी जो चीजें हैं करना, ये अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन और डिस्टॉर्शन, या तो एक ये ले सकते या तो दूसरा और एक है 12वें की जगह, ये तो है ही है, पर ये क्योंकि रिपीट हुआ है इसके लिए एक दूसरा ले लो 12वां, कर्ज, मर्ज और मर्ज। एक है कर्ज, स्थूल कर्जा और सूक्ष्म कर्जा, एक है मर्ज, मर्ज अर्थात बीमारी, और तीसरा है मर्ज। ये भी तीन एक बरमूडा ट्रायंगल है, मर्ज अर्थात मर्ज हो जाना, सारे दैवी संस्कार, यहां की मर्यादाएं, यहां की बातें, ये भूल ही जाना कि हम ब्राह्मण है कुछ समय के लिए कभी कभी। इसके लिए कल की मुरली में था ना, पांच चीजें याद रखो, तुमने पांच चीजों को पहचाना है, कौन कौन सी, स्वयं को, बाप को, कर्तव्य को, समय को, ब्राह्मण परिवार को, क्या वास्तव में पहचाना है, तभी सफलता मिलेगी, तभी निर्णय करने की शक्ति आएगी क्या करना है क्या बनना है। तो कर्ज, कर्ज अर्थात ऋण, हम इंडिपेंडेंट हो, किसी के कर्जदार ना हो, किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कुछ करना नहीं, जिससे कुछ लिया है उसको वापस दे दो, पैसा है फ्री हो जाओ, ऐसा नहीं कि वो तो अपना दोस्त ही है, क्या फर्क पड़ता है, जिस जिस से पैसे लिए सारा क्लियर करो अकाउंट, सूक्ष्म स्थूल सब कुछ, कोई हमें कर्जदार होकर मरना नहीं है, नहीं तो वापस आना पड़ेगा, 10 रुपए भी अगर किसी के रह गए तो देने तो पड़ेंगे ना वो भी है तो कर्जदार नहीं बनना है। मर्ज दूसरा है, मर्ज, मर्ज अर्थात बीमारी, कोई व्याधि, किसी भी व्याधि से हम ग्रस्त ना हो, मन की भी शरीर की भी, ऐसा स्वास्थ्य, संपूर्ण सर्वांगिक स्वास्थ्य के साथ हम जाए। और तीसरा बताए मर्ज, सारे खजाने, प्राप्तियां, संगम युग, बाबा ने क्या क्या वरदान दिए, वो सब मर्ज हो जाना। तो ये एक बरमूडा ट्रायंगल है 12वां, एडिशनल में वो भी कर सकते क्योंकि पर वो रिपीट हुआ है। तो ऐसी ये 12 चीजें, 12 अर्थात 36 चीजें हैं जिनको हमें ध्यान देना है। और जैसे कहा कि नया वर्ष चालू हो रहा है और अव्यक्त मास के लिए आपके कुछ सजेशंस होंगे तो आप लिख के भेज सकते हैं कि क्या किया जाए संगठित रूप से। इंडिविजुअल तो हर एक करेगा ही, पर यहां पर इस क्लास में क्या किया जाए वो आप बता सकते हैं कि ये लिया जाए हर दिन और किस तरह लिया जाए और सब लोग एक रस हो के कौन सा पुरुषार्थ करे। ठीक है, ओम शांति।